ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्रनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाभिः। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना तुभि ज्ञाय राधे तं न मां चरणन्ति। भागवतम दशम स्कंध अध्याय रथमास्थाय प्रेयौ नन्दगोकुलम्। हमने बतलाया जो कंस ने कृष्ण और बलदेव जी को ब्रज से लाने के लिए निर्देश दिया। एक दिन पहले एकादशी के दिन उन्होंने अक्रूर को आदेश दिया जे जाओ, वो उनका अमात्य भी था, मंत्री भी था। अक्रूर वाज द मिनिस्टर ऑफ कंस, बट ही न्यू दैट इज ऑल्सो भक्त ऑफ कृष्ण, जानता था। तो अक्रूर को उन्होंने जिस दिन आदेश दिया कि ब्रज में जाओ, उस दिन एकादशी थी। उन्होंने सोचा कि आज एकादशी है, आज कोई भी काम नहीं करूंगा, आज मैं भगवत चिंतन करूंगा। पिछले एकादशी के दिन कुछ विचार करने लगे। भक्त लोग ये विचार करते हैं, मैं कुछ करने में असमर्थ हूं, यदि भगवान की इच्छा होगी तो कंस ने तो हमें आदेश दिया है जाने के लिए, किंतु यदि भगवान की इच्छा नहीं होगी तो किसी भक्त को हमारे पास में भेजने मत जाओ, या कोई अंतः प्रेरणा हम में आएगी। इसलिए एकादशी के दिन आज हम हरिनाम कीर्तन करें, भगवत कथा चिंतन करें और एकादशी का विधिवत पालन करें और यदि कुछ बदला नहीं, कोई बात ऐसी नहीं हुई तो कल मैं जाऊंगा। इसलिए उस दिन जान बुझ करके नहीं गए। He thought that today is Ekadasi. Kansa has ordered me to go there. But today I will not go anywhere. I will observe Ekadasi by chanting name, by hearing Hari Katha, by remembering Krishna. And if Krishna wants, then he will send anyone who will tell me, don't go. Or anything will come in my heart by the mercy of Krishna, and then I will change this view not to go. Otherwise, I must go there. So thinking this, he took, he did not went to Braja. वो ऐसा सोच करके नहीं गए। और उसी दिन प्रातः काल में दुष्ट कंस ने केशी को वृंदावन में भेजा मारने के लिए कृष्ण को। केशी बड़ा भारी दुर्धर्ष असुर था। वो अपनी माया से किसी के रूप को धारण कर सकता था, माया भी घोड़ा बन सकता था, मनुष्य बन सकता था, कोई भी चीज बन सकता था। ये सब असुर लोग इस विद्या में निपुण होते थे। All the asuras, demons, used to be very yogi. They can take easily any shape or disappear. They can be donkey or horse or anything. He was so powerful that he Kans called him and told, "Oh brother, I want that you should help me. You should go to Braja and try to kill Krishna and Baldev. I think that you will do. You will follow my order." ऐसा कर करके कंस को कंस ने उसको भेजा। कंस उसने केशी ने कहा कि कृष्ण का स्वरूप जरा बतलाओ, हमको पता नहीं। कृष्ण सांवला नाम का सांवला एक लड़का है, उम्र होगी 10 वर्ष की, बड़ा ही देखने में बड़ा खूबसूरत है और ऊपर में सिर पर मोर मुकुट धारण करता है, हाथों में या अधरों पर मुरली रहती है, पीताम्बर कपड़ा पहनता है पीला। उसके साथ में सब सखा लोग हो गए और गायों को चराता होगा, तुम ऐसा देख करके उसे मार डाल, ऐसा उसने आदेश दिया। इधर में एकादशी के दिन ही और दूसरे दिन और केशी ब्रज भूमि में वहां गया और वहां पर देखा एक श्यामले लड़के को जो हाथ में बांसुरी लिए हुए मुख पर में बजा रहा और सिर पर मोर मुकुट है और पीले वस्त्र हैं, किंतु ये कृष्ण नहीं थे, ये थे मधुमंगल। मधुमंगल ने कहा, सखा तुमको ब्रजवासी लोग प्यार करते हैं, खाने पीने के लिए लड्डू इत्यादि देते हैं, हमें कोई नहीं देते, तो ये तुम्हारा कोई गुण नहीं है, ये गुण बंसी का और मोर मुकुट का और पीले वस्त्रों का है। यदि तुम हमको ये दे दो और हमारा वस्त्र है तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, हम ही को लोग देखें। अच्छा अदल बदल हो जाए, बस उन्होंने अपने कपड़े लत्ते सब उनको दे दिया और मध मंगल ने कृष्ण का मोर मुकुट बंसी पीताम्बर लठिया इत्यादि धारण कर दिए। उसी समय में वो आया केशी, घोड़े का विराट घोड़े का रूप धारण कर, उनकी जुल्फे आकाशों से लगती थी, बड़ा विकराल भयंकर रूप, हिम हिम करता हुआ जब ब्रज में आया तो सब लोग स्त्रियों के गर्भपात हो गए, यहाँ तक कि पशुओं के, और गायें चारों तरफ में टकराने लगी और भगी चारों तरफ में। और उसने देखा जे ये कृष्ण है, इनको बस बड़ी जोर से दौड़ा और दौड़ करके दुलकती झाड़ी, वो तो बाई चांस इनको नहीं लगी, दुलकती की हवा से गिर पड़े और तब कहने लगे किसे जरूरत नहीं है तुम्हारे कपड़ों और ये तो महाविपत्ति आई हमारे ऊपर, लड्डू तो गया तो गया और ये हुआ, आज से हम जरूरत हम नहीं समझते हैं तुम्हारे इन चीजों को लेने का। इसलिए कृष्ण को ये सब समर्पण करने जा रहा, उसी समय कृष्ण चट्ठार हो और केसी को जा करके बाल ठोकने लगे, केसी इन पर आक्रमण किया, केसी के मुख में उन्होंने अपना हाथ घुसा दिया, घुसाते हैं ये वज्र और लोहे के समान और एकदम लाल गर्म जैसा गले में अटक गया, प्राणवायु अटक गई, आंखें निकल आई और वो लीद इत्यादि करता हुआ टट्टी करता हुआ वहां पर एकदम सेंसलेस होकर के गिर पड़ा। इस प्रकार से कृष्ण ने उसे मार डाला। ये प्रातः काल की बात है। उसी समय शाम को व्यमासुर अपराह्न में व्यमासुर को मारा। व्यमासुर की गुहा कहाँ है? काम में बंद भोजन थाली के पास में काम में बंद और वहां पर उन्होंने मारा। एक दिन में कितना चलते फिरते और कहाँ कहाँ रहते थे वो कृष्ण के लिए संभव है। आज से करीब करीब ये 5000 वर्ष की बात है। आज से हम लोगों का जन्म करीब करीब 70-75-76 वर्ष का हुआ है और उससे 60-70 वर्ष पहले हमने सुना है कि हम लोगों के दादा परदादा जो थे वो 50-60 माइल दूर गांव से कचहरी कोर्ट करने के लिए आरा जाते थे। ये आरा एक टाउन है, 60 माइल जाना 60 माइल आना। सनातन गोस्वामी को आप लोगों ने सुना है जब वृंदावन से 15 मील 16 मील गोवर्धन और 16 मील की 14 मील की परिक्रमा, फिर वहां से 14 माइल यहाँ आना और यहाँ से फिर 7 माइल जाना वृंदावन। ये प्रतिदिन का उनका दैनिक साधारण सी बात है। उनके पैर बहुत लंबे लंबे होते, बहुत लंबे लंबे होते, इसलिए उन लोगों के लिए ये संभव बना। हमने सुना है कि एक बार सुंदरबन में वहां के खेतिहरों ने देखा एक बहुत बड़ा लंबा आदमी चला जा रहा, इतने में ट्रेन आई, ट्रेन को अपने कदमों से ऐसे लांघ करके दौड़ता हुआ चला गया। कहीं उसके यहां पर कुछ घाव था, पीछे से पता चला जे ये था कौन, द्रोण अश्वस्थामा था। उसकी कान की बाली गिर गई तो उसको 50 आदमी लोग मिलकर के उठाने में लगे। कितने बड़े बड़े बलवान, कितने लंबे चौड़े उस समय के आदमी होते थे, इसलिए उन लोगों के लिए 10-20-50-60 माइल चलना पड़ना ये कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। जो वहां पर वृंदावन में केसी को मारा सवेरे और शाम को मारा काम्यवन में व्यमासुर को मारा, और केसी के मारने के बाद ही दोपहर में नारद जी से भेंट हुई और नारद जी ने उनको बतलाया कि आपको ये भविष्यत लीलाएं करनी, इसलिए टीकाकार हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कंस फाल्गुन कृष्ण एकादशम कृतव्य मंत्रणा। कंस ने फाल्गुन की एकादशी में ये अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा की और उसी दिन केसी को और अक्रूर को भेजा ब्रज में। केसी गया वहां ब्रज में वृंदावन और अक्रूर कहां मिले नंदगांव, इसे मानो नंदगांव में रह करके सब जगह ही उस समय जाते थे वृंदावन। दूसरे दिन प्रातःकाल केसी बधे
शेषी का वध किया और अक्रूर प्रस्थानम, अक्रूर ने प्रस्थान किया सवेरे नंदगांव के लिए और नारद स्तुति उसी दिन मारा गया वो केशी। अब मारने के बाद में उन्होंने स्तुति की नारद जी ने कृष्ण की, ये आपको ये सब भविष्य में कार्य करने हैं। और अपराह ने व्योमासु वधो अक्रश्च सायं व्रजत आविशत, और सायंकाल में ये अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। सो इट हैज बीन टोल्ड, विश्वनाथ चक्रवर्ती है टोल्ड दैट ऑन एकादशी इन द मंथ ऑफ फाल्गुनी कंस एडवाइज विथ हिज एडवाइजरी बोर्ड एंड ही सेंट ही टोल्ड ऑर्डर्ड अक्रूर टू गो ब्रज एंड ऑल्सो ही ऑर्डर्ड केशी टू गो एंड किल कृष्ण। सो नेक्स्ट डे अक्रूर वेंट टू इन द्वादशी टू नंदगांव एंड केशी वेंट टू वृंदावन वेन कृष्ण वाज ग्रेजिंग काउस एंड कृष्ण किल्ड हिम एंड इन द आफ्टरनून कृष्ण किल्ड व्योमासु एंड इन द इवनिंग अक्रूर रेस्ट वृंदावन, नंदगांव में पहुंचे। जब वो जा रहे हैं गच्छन पथी, कैसे गए अक्रूर जी कैसे गए, कंस ने इस बड़े काम को साधन करने के लिए अक्रूर को सब प्रकार की सुविधाएं दी। उसने अपना रथ सोने का बना हुआ रथ और अच्छे अच्छे से घोड़ों से जीते हुए चार घोड़ों से जीता हुआ वो रथ रथम अस्थाय रथ को दिया और अपने हाथों से उनको बैठाया और उनको बतलाया कि कैसे हमारा ये काम साधन कर। When consent accrued to Braja, he gave his own golden chariot with high classes of horses and he sent to Gokul. उसने बैठा करके उसमें भेजा गच्छन पथी महाभागो भगवत अनुभुजे क्षणे भक्ति परा उपगत एवं एतत् अचिंतयत्। जब अक्रूर जी चले व्हेन अक्रूर बिगन टू गो टू ब्रज ही वाज सो भावुक, माने ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहे बड़े भावुक, भक्तों क्या सोच सकते हैं, मेरे जैसा दुर्भागा व्यक्ति, आज भगवान की विशेष कोई कृपा है तो मैं जा रहा हूं उनका दर्शन करने के लिए, मैं तो जा नहीं पा रहा था डर के मारे ये कौन समय दंड देगा जैसे कि और ब्रजवासियों के लिए या जादुओं के लिए आदेश है कोई नहीं जाएगा और उसके डर के मारे सब जादू लोग भाग गए, किंतु आज हमें बुला करके ये खुद वहां पर भेज रहा है। मैंने तो कोई यज्ञ किया नहीं, मैंने कोई पुण्य की बात तो की नहीं, अरे कृष्ण का दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है और दुर्लभ बात है। टू हैव ए दर्शन ऑफ कृष्ण इट इज वेरी वेरी हाई थिंग एंड इट इज क्वाइट एक्शन दुर्लभ, मैंने क्या रे आई एम नॉट डन एनीथिंग, आई हैव डन नो एस्टेरिटी नो पुण्य कर्म नथिंग। कहो मैंने कोई मंगल का अनुष्ठान नहीं किया है,
अतः भगवान का जो साक्षात्कार, भगवान से जो दर्शन होते हैं, उसके निमित्त भक्तों की पूजा होनी चाहिए। मैंने भक्तों का संग नहीं किया, मैंने पूजा नहीं की, सेवा नहीं। बिना भगवत कृपा से या भक्तों की कृपा से किसी कार्य में भक्ति नहीं है, और भगवान का दर्शन करना बड़ा बड़ी कठिन है। किंतु भक्तों के साथ ही रहने से नहीं होगा, इस बात को समझो। भगवत भक्तों के साथ तो उनके केस में वो क्या होते हैं, जू होते हैं, जू तो रक्त पीते हैं उनका, तो भक्तों की सेवा करते हैं। तो ऐसा ना हो, गुरु के पास वैष्णव के पास में रह करके जू जैसा नहीं, कैसा रहे, अनुकूल रूप में सेवा की वृत्ति के साथ में रहे। इसलिए कह रहे हैं, मैंने पूज्य उपहारों के साथ में, पूजा उपहारों के साथ में मैंने भक्तों की कोई सेवा नहीं की है, फिर ये सुजोग कैसे आ गया भगवान का दर्शन। यहां तक कि जो शुभ कार्य है वो शुभ कार्य भी नहीं किया है, भगवत भक्ति की तो बात अलग रहे, मैंने तपस्या भी नहीं की। अथवा भक्तजनों को एमए कुछ ऐसा कोई दान नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, उनको कुछ दिया नहीं, कंस के डर के मारे में विशेष करके उनसे मिल नहीं सकते। ददाति प्रतिग्रहणाति गोह्यम माखात पृच्छते भुंगते भोजते चैव सर्वदम प्रति लक्षण। अपना प्रिय व्यक्ति किसको दे, वैष्णव को दे, भक्तों को प्रिय समझे। जो भक्तों को प्रिय नहीं समझ सकता उनको देगा क्यों। वी शुड ट्राई टू गिव अवर डियरेस्ट थिंग टू वैष्णव पर्सन। एक समय की बात है, कोई प्रिय व्यक्ति होता है उसी को कोई देते हैं। जिसका प्रिय कोई विषय व्यक्ति हो तो विषय को देगा, और जिनका प्रिय वैष्णव होंगे वो उनको देंगे। एक समय की बात है, महाराज भर्तृहरि जिनके छोटे भैया विक्रमादित्य हैं, बड़े भैया का नाम था भर्तृहरि, सद्गुण संपन्न सुशासक अभी युवक देखने में बड़े सुंदर और सब गुणों से भरपूर थे, उन्हीं की राज्यसभा में कालिदास बराहमीर और वो क्या अमरकोश को बनाने वाले अमर सिंह और ऐसे ऐसे बारह या नौ रत्न थे। तो ऐसे ही उनकी गरिमा आप लोग समझ सकते हैं। एक समय में एक कोई जवाहरात का व्यापारी आया और 9 लाख उस समय रुपए की कीमत का दुर्लभ हार उनको भेंट किया, अपने हाथों से उनके गले में दे दिया अपने व्यापार चलाने के लिए। राजा देख करके बड़े प्रसन्न हुए और जब घर गए अपने राज्यसभा से उठ करके अपने महल में गए। अभी नौ विवाहिता पत्नी उनकी बड़ी सुंदरी बड़ी सुशील सी लगती थी, अपने हाथों से उसके गले में पहना करके बड़े आनंदित हुए और देखने लगे कि इसलिए दिया। उन्होंने विचार किया कि यदि हमारे इस विश्व में कोई हमारा प्रिय है तो हमारी पत्नी ही हमारी प्रिय है, इसलिए उसको गले में उन्होंने डाल दिया और उसके गले में दे करके बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद में एक दिन वो हमने अपना राज्य चला रहे हैं, ये यद्यपि इसका विवाह हुआ था राजा के साथ में किंतु इसकी प्रीति पहले से विवाह के पहले से ही उनके सेनापति से थी और उसे लुप छिप करके मिलने की चेष्टा करती थी। किंतु वो इसको अभी नहीं देता था, माने अधिक प्रीति नहीं करता, और उसको वो प्रीति से वशीभूत करना चाहती थी। इसलिए एक दिन मौका पा करके उसने रात के समय में वो हार उसके गले में डाल दिया। ये प्रसन्न होता चला गया वो, और वो सोचने लगा कि यहाँ की जो वेश्या है बड़ी सुंदरी नवज्योति, बड़ी सुंदर गायन करती है, उसको प्रसन्न करना है। इसलिए उसको रात में एक दिन जब उसके उससे मिला तो उसको गले में वो पहना करके बड़ा आनंदित हुआ। वो किंतु वेश्या राजा के प्रति आसक्त थी। एक दिन मौका पा करके वो राजा से मिली और राजा को इसने उपहार में दिया। राजा ने देखा जिसे एक महीने के अंदर में यह हार वही हार है जिसको मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये कैसी यहां आ गया वेश्या के पास। उसने बड़े प्यार से बोला उनसे कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ये बतलाओ कि सचमुच में यह हार तुम्हारे पास में कैसे आया, कहां से मिला। यदि वेश्या बतलाती है तो राजा बिगड़ जाएगा और उसे मार डालेगा। जो सेनापति हमारे पास आता है तो सेनापति को भी मार डालेंगे, इसलिए वो बतलाना नहीं चाहिए। उन्होंने तलवार निकाला था कि अभी तुम्हारा गला साफ कर देंगे, ठीक ठीक बतलाओ, और यदि सच सच बतलाएगी तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे। वो डर गई और डर करके सचमुच में उगल दिया, ये आपके जो सेनापति हैं हमारे प्रति आसक्त हैं, वो हमको प्रसन्न करने के लिए ये हार दिया, किंतु मैं आप ही को सबसे अधिक, आप ही हमारे प्रिय हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तभी उन्होंने दिया ले लिया, इसलिए आपको ये हार सौंप रही, ये ठीक है जाओ। दूसरे दिन उन्होंने सेनापति को तलब किया, सेनापति आए, इस हार को आप पहचानते हैं, देख करके वो गुम रह गए। उन्होंने तलवार खींच ली, अभी ठीक ठीक बतलाइए ये आपको कहां से आई, ये हार दिया आपने उस वेश्या को दिया, कहां दिया आपको मिला कहां से। तो डरने लगा, कहा अभी देखो अभी तुरंत। तो उसने कहा जी हाँ, आपकी पत्नी ने हमको ये दिया है, आपकी पत्नी हमसे प्रीति करना चाहती है, इसलिए हमको प्रसन्न करने के लिए दिया और हमने उसको दिया, ठीक जाइए। अब सोचने लगे, रात में उनको नींद नहीं आई, मैंने प्रीति किया अपनी पत्नी को सबसे अधिक, उस पर विश्वास किया, उसने विश्वासघात कर हमारे प्रीति को ठुकरा करके सेनापति से प्यार किया, और सेनापति ने उसे ठुकरा करके उस वेश्या को प्यार किया, और उसने उसके प्यार को ठुकरा करके हमें प्यार किया, यही जगत है। मैं किस लिए ये सब कर रहा, किस लिए कर रहा हूं, धिक्कार है मुझे इस संसार में, किसको लेकर के मैं बास करूंगा, अधिकार है हमें, हमें न राज्य चाहिए, राज्य लेकर के ही हमें क्या देगा, यदि संसार में प्रीति नहीं है तो क्यों नहीं उस प्रभु से प्रीति करूं जो जगत का सृजन करने वाले हैं, हमारा भी और सबका वो इष्ट देव है, इसलिए उन्हीं से ही प्रयाग करना कर सकते हैं, तो सबको छोड़ करके लाख को मारकर अपने भाई के सिर पर मुकुट पहना दिया, सवेरे बुलाया भोर में रात में ही, और उन्हें कुछ उपदेश दिए और दे करके रात ही में वो सबको छोड़ छाड़ करके नंगे धड़ंगे केवल एक लंगोटी पहन करके, ये भर्तृहरि जी हैं, उनका श्रृंगार शतक और बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत विद्वान आदमी थे। तो यदि कोई भगवान के प्रति के बदले संकल्प करके आज गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे तो उनकी यही दुर्दशा होती है, यदि किंतु भगवान प्रसन्न हो तब तो उनको वैराग्य होगा, और नहीं तो भगवान का भजन करने के लिए घर बार स्त्री पुत्र छोड़ करके फिर उन्हीं का चिंतन करेंगे, गुरु वैष्णव का सुन तो यही कह रहे हैं, हमने कैसा कोई कर्म किया नहीं, वैष्णव की तो हमने सेवा की नहीं,
कोई तपस्या भी आराधना भी नहीं थी, शुभ कर्म भी नहीं थी, और तभी हमें ये सुयोग मिल गया। न तो हमने कुछ दान भी किया, वैष्णव को दान करना चाहिए, वो दान भी नहीं किया। एक बात हमको भी लगती है और सबको भी लगनी चाहिए, गरीब गरीब लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना जथा सर्वस्व कमाई का कुछ भाग वैष्णवों को देता है, यही इससे हमारा कल्याण होगा। बड़ी मुश्किल से कमाई का, परिश्रम करके, पसीने से, खून को पसीना करके, और उस कमाई का फल हमको देता है। या आप ये गुरु वैष्णव की सेवा करें और उसका यदि हम मिसप्रयोग करें, दुरुपयोग करें, तो क्या गति होगी, क्या गति होगी बतलाओ तो? भगवान जानेंगे कि नहीं, गुरु जानेगा कि नहीं? किंतु सुख नहीं था, फिर और एक बात कह दूं, पहले द्वादशी में सब लोग भिक्षा जाते थे, वो सब दे जाते थे, आजकल कोई परवाह ही नहीं करता। ये सब भाई 20 भरा है, हम पुत्र हो तुम लोग इसलिए कह रहा हूं, ये सब 20 भरे पड़े हैं चीजें, ऐसा मत करो तुम लोग। कोई जरूरत है आश्रम दे रहा है हम लोगों को, वैसे निष्कपट होकर के गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए। महिलाओं के लिए भी ये सब विचार करना चाहिए, अर्थ का दुरुपयोग न हो, या वैष्णव की कैसे निष्कपट रूप में हम सेवा करें, इसी यही तो शिक्षा करने आए हैं। यदि ये शिक्षा नहीं करते कि हम विपरीत शिक्षा करते हैं भक्ति के विपरीत, तो ये देखो ऐसे वैष्णव लोग सोचते हैं, हम लोगों को भी ये सब सोचना चाहिए। आज हमारा कितना सौभाग्य है, काम घर में सड़ रहे थे, न खाने को था न पीने को था, किसी का खाने पीने का भी था किंतु सुख नहीं था, कोई समझ बूझ करके भी आया है, कितना सौभाग्य। जी कहां से हम इस ब्रज धाम में आए हैं और ऐसे वैष्णव का संग मिला है, जीवन को निर्वाह करने के लिए कोई भी कष्ट हमको नहीं करना पड़ता है, सारी व्यवस्था अपने आप हो रहा है, इतना सौभाग्य। शुद्ध भक्ति का जितना हमारे यहाँ विचार होता है, पाठ प्रवचन कीर्तन होता है, और कहीं हम कहीं भी हम नहीं देखते हैं, किसी भी संस्था में हम नहीं, अपने संस्थाओं में दूसरी जगह हम नहीं देखते हैं जितना यहाँ पर हम लोग करते हैं। अभी ब्रजमंडल की कैसी सुंदर उपदेशों से भरी हुई, हरि कथा से भरी हुई, रसीले स्थानों में हम लोग गए और कैसी कैसी सुंदर सब हुआ, ये सुयोग कभी मिलेगा हम लोग को सोचना चाहिए। आज इतने सुयोग मिल रहे हैं, मैं दुर्भागा, ये कैसे हो गया, फिर उसमें दुर्भावना कहां से आएगी, ये सोच रहे हैं हमारा यह पुण्य प्रताप न जाने कैसे हो गया कि मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। मैंने भक्तों को तो कुछ दिया नहीं, जिसके पुण्य से भगवान का यह दुर्लभ दर्शन होने जा रहा है, यद्यपि वो जानते थे कि दान से, तपस्या से, होम से, संयम से, योग से भगवान का दर्शन नहीं होता है, ये जानते हैं। हर अन्य विडंबनम, केवल मात्र भगवत भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन हो सकता है, तो जिसमें भक्ति है ऐसे वैष्णव का संग, उनको कुछ दिया दिया जाए, सेवा की जाए, तो उसके फल से ये हो सकता है, तो हमने तो कुछ किया नहीं। ये जहां पर भक्ति रहेगी ये धन्य भाव आएगा। हमारी न्याय भक्तिहीन और हमारे पास में कुछ है नहीं, निष्किंचन हूं, यह स्वप्न में भी ऐसा सौभाग्य आना बड़ा भारी कठिन होगा। अभी हम लोग अपनी भक्ति का विचार करें तो देखेंगे हमारी भक्ति जिस स्टेज में है, न जाने कौन सा ही पूर्व जन्म का संस्कार था जो वृंदावन में ब्रज में आकर के ऐसे वैष्णवों का संग मिला, जिसके लिए विश्व के लोग तरसते हैं और हजारों लाख रुपए खर्च करके आ रहे हैं, और हम लोग को अनायास चुटकी बजाते ये मिल गया, यही शायद भगवान की अहेतुकी भक्ति है, अहेतुकी कृपा है। वैष्णव लोगों का ऐसा ही विचार आता है, धन जन गेह देह विषय वस्तु में कि जान में मैं आबद्ध हूं, पुत्र और परिवार की चिंता में मैं निमग्न हूं, और इधर में मैं भगवान का परम पद दर्शन करने जा रहा हूं, मैं इनके द्वारा भगवत हमारी जो रही सही भी होगी वो नष्ट हो गई होगी, किस लिए? देह गेह में आसक्त होकर इस शरीर को मैंने ये समझा जे मैं हूं, यही समझा, और इसको भरण पोषण करने के लिए इसे संबंधित जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके भरण पोषण में जो रहता है वो कुकर सुकर के समान है, जो अपने ही इस सब चीजों में लगा रहता है, वैष्णव की सेवा वैष्णवों से हरि कथा नहीं सुनता, तो मैंने तो ये सब किया नहीं, मेरे नए नए विषयाशक्त भगवत विमुख लोगों के लिए भक्ति के द्वारा साध्य जो भगवान का चरण दर्शन है ये कैसे संभव है? जो लोग विषयाशक्त हैं वैष्णव का संग नहीं किया, संग किया भी तो वैसे ही संग किया विमुख रह करके, सेवा की वासना से नहीं, इसलिए भक्ति के द्वारा केवल भक्ति आम एक राज्य भक्ति रे मनति दर्शयति भक्ति बसो पुरुष इत्यादि लिखा। और ऐसा सुदुर्लभ परम्पर दर्शन की युग्यता हमारा नहीं है, तभी ये कैसे मिल गया, बड़े आश्चर्य की बात है, एकदम भावुक हो गए, आंखों से आंसू आ गए, और प्रारब्ध कर्म से भगवान का कोई दर्शन नहीं कर सकता, कर्म से वो नहीं दर्शन होता, ज्ञान योग से उनका दर्शन नहीं होता है, अरे कर्म के वश में जो शूद्र के कुल में जन्म लिए हैं, शूद्र होकर के जन्मे हैं, उनको जैसे वेदों में अधिकार नहीं है, जो शूद्र लोग शोक करने वाले ऐसे में उनका जन्म हुआ है, वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, स्त्री शुद्र स्त्री द्विज बंधुना त्रैना सुति गोचर, शुद्र स्त्री और द्विज बंधु, द्विज बंधु किसको कहते हैं, तो यज्ञ पवित्र धारण करने वाले होते हैं, रस्सी जैसे लटका लिया, और ब्राह्मण उचित कोई कर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म करके ले करके और समझते हैं कि मैं ब्राह्मण हो गया, कुकर्म करते हैं, भगवत भक्ति नहीं करते, और मैं ब्राह्मण हूं जैसे आजकल के ब्राह्मण, ये ब्राह्मण बंधु इनके लिए वेद के मंत्र उच्चारण करने पर भी वो नहीं होंगे, अधिकार नहीं है, जैसे अभी तोहफा तोहफा पढ़ने वाला व्यक्ति एमए पीएचडी की पुस्तकों को ग्रहण नहीं कर सकता है, विद्या को नहीं ले सकता, ऐसे ही इनका, जो व्यक्ति विषयाशक्ति लेकर के ही प्रमत्त है वो कैसे प्रेम भक्ति द्वारा लाभ होने वाले भगवत भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर सकता है, हमें कोई भी योग्यता नहीं है, तथापि योगी जनों की जो ध्येय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का सौभाग्य हमारा कैसे हो गया, अब तो यही समझता हूं कि उनकी अहेतुकी कृपा है, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी ऐसा लिखा है, प्राचीनानां भजनम अतुलम श्रृण्वतां में नैराश्येण जलति भक्ति लेशालसस्य विश्वद ऋषि तवाकर्ण कारुण्य वीथि हंत अंतरे सत्यमपि, पूरा श्लोक में जा रहा है, प्राचीनानां भजन अतुलम श्रृण्वतां दुष्करम, प्राचीन लोगों का भजन में अत्यंत सुकठिन तपस्या आराधना दे करके हमारा हृदय निराशा से जल उठ रहा है। क्यों? हमारे लिए वैसा दिन रात जग करके बिना खाए पिए धुव जैसा हवा रोक करके भी भगवान के लिए तपस्या करना, नारद जी जैसा कठोर तपस्या, ये कश्यप और अदिति शरीर के पैर को ऊपर कर दिया, नीचे अंगूठे के बल पर हजारों वर्ष खड़े रहकर हवा पानी सब छोड़ करके आराधना किया। अभी रूप सनातन को भी देखो, संख्या पूर्वक नाम गान्नत भी कामावसाने के निद्राहार विहार का चातंत दीनों के, और उसके द्वारा भी उनको मिला क्या? मिला क्या? नारद ऋषि को नारायण का दर्शन मिला, ध्रुव का नारायण का दर्शन एक क्षण के लिए मिला, कश्यपति को वसुदेव देवकी के रूप में मिले, कृष्ण के रूप में नहीं, ब्रज की भक्ति नहीं मिली, कृष्ण का दर्शन नहीं मिला। अक्रूर सोच रहे हैं ये कठिन रघुनाथ दास गोस्वामी, निराशा, अब हमको कृष्ण की प्राप्ति नहीं, उनकी सेवा नहीं मिलेगी। बस एक ही आशा बिंदु है, क्या? भगवान की करुणा सर्वत्र बरस रही, वो अहैतुक दयालु है, हमने सुना है। इसलिए यदि कभी उस कृपा की कण कभी हमारे ऊपर भी छिटक भी जाए तो हमारा करुणा हो, इसलिए जीवन धारण करके अभी ये भक्तों का भी कौन कह रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी। कैसे लोग भगवान के परिकर वो लोग कर, और हम लोग को कोई चिंता नहीं है, कोई भाव ही नहीं आता है, ऐसा भाव ही नहीं आते। ओ, समझ गया, समझ गया। यहां अशेष कृपा निधि भगवान अच्युत की अहेतु की कृपा है, भक्ति की परिभाषा में ऐसे भी दिया गया है श्रीमद्भागवत में, लक्षण भक्ति योगस्य उदाहरितम अहेतुक अप्रतिहता, क्या है अव्यहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे, निर्गुण भक्ति। कौन सी भक्ति? गंगा भसाव, गंगा का की धारा जो है अटूट धारा, जो हिमालय से निकलती है समुद्र तक जाती है, अखंड धारा प्रवाह जाता है, उसी तरह से हमारे चित्त की वृत्ति तंग धारावच अविच्छिन्न गति से भगवान के प्रति लगने लगे यदि, और वो भी कैसी अहेत की हो, किसी लौकिक कामना या पारलौकिक कामना के लिए न हो, किस लिए हो, और व्यवधान रहिता, किसी प्रकार का व्यवधान, कर्म ज्ञान योग तपस्या इत्यादि का व्यवधान न रहे, इसको कहते हैं भक्ति। ये साधारण नहीं है भक्ति, हम इसके लिए आए हैं, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगत में इस परंपरा में जो आए हैं, वो थोड़ी सी सावधानता के साथ में यदि करें तो रागानुगा भक्ति में उनको लोभ होगा और वो सहज ही में उसके आकर के ब्रज की भक्ति को पा सकते हैं, किंतु है बड़ी कठिन, बड़ी कठिन। इसलिए इस सौभाग्य को समझिए और उसके लिए कुछ कुर्बानी कीजिए, अपने भोगों की कुर्बानी कीजिए, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए सब कुछ, साधु संग सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इसलिए ये कृष्ण की अहत की कृपा है, किंतु होगी किस पर? वो कह रहे हैं, ओहो मैं ये समझ रहा हूं कि अब मैं जो जा रहा हूं इसका मतलब यह है कि हमारे सारे अनर्थ दूर हो गए हैं, नहीं तो ऐसा व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता। तो ये भगवान की अहत की कृपा से ये हमारे सारे जो अनर्थ थे वो जरूर दूर हो गए, नहीं तो मैं नहीं जा सकता था। आज ये भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। यहां अहेतु करुणा स्वतः स्फूर्ति प्रवाह धारा, भगवान की ये जो करुणा है अहेतु की, इसकी प्रवाह धारा ऐसी है अविच्छिन्न गति से बहती रहती है, और उसका एक कण भी यदि हमें छू गया हमारा कल्याण हो जाएगा, किंतु कपटी के हृदय में नहीं होगा। भगवान सबको दें किंतु कपटी को नहीं देते, कपट या बहुत जान बूझ करके जो इन चीजों का अवलंबन करता है उनको नहीं। यदि नहीं जानता है, आसक्त है संसारिक विषयों में, वो दूसरी बात है। घर छोड़कर और ऐसा सब यदि हम करते हैं, समझ बूझ करके बार बार ऐसा अपराध करते हैं, अपराध भी करेंगे और भगवान का भजन भी करेंगे लोगों को दिखाने के, वो क्षमा नहीं करेगी, उस पर भगवान की करुणा स्पर्श नहीं करेगी। खर श्रोता तपस्विनी श्रोतस्विनी अपना बेगे निरंतर बहिया जाए। खर श्रोता जिनकी स्रोत में छोटा सा कोई तिनका भी है खंड विखंडित हो जाएगा और वो प्रवाह में बह करके नहीं जिन्हें कहां चला जाता है। कभी कभी एक धारा एक भूखंड को काट कर उसके एक एक कण को न जाने कहां कहां अलग अलग उसको बहा करके ले जाता है और उन्हीं की करुणा से कुछ कण या कुछ घास या तिनके एक किनारे में समुद्र अथवा समुद्र के आर पार समुद्र के किनारे में भी लग जाते हैं और समुद्र के बहाव में कभी या नदी के बहाव में एक जगह की एकत्रित मिट्टी भी अलग अलग चली जाती है, कोई ठीक नहीं जी कहां चली गई। और कभी कभी एक तिनका भी जिनकी करुणा से समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पर लग जाता है। ऐसे ही भगवान की अद्भुत कृपा के द्वारा मैं समुद्र में कहां बह रहा था संसार समुद्र में, और आज ऐसा हो कि आज मैं तीर पर लगने जा रहा हूं, आज भगवान का दर्शन होने जा रहा है। ओ, आज हमारा परम सौभाग्य है, साधन के बल पर यह हमारे लिए असंभव था। भगवान की अचिंत कृपा महात्म्य से ही हो सका है ऐसा संभव। अचिंत्य अहित की भी बतलाया और अचिंत भी बतलाया। अचिंत मैंने क्या है, हम जिसकी चिंता नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, कैसे दयालु। मैं अधम अकिंचन, प्रेम भक्ति का लेश भी हमारे अंदर में नहीं है। अब बिना प्रेम भक्ति हुए भगवान के चरण के दर्शन नहीं होते, ये कैसे संभव हुआ। बल्कि इसके विपरीत में भगवत बहिर्मुख वैष्णवों का विमुख भोग सर्वस्व अपने भोग की कामना करने वाला महाराज कंस की सेवा में मैं लगा हुआ हूं, मैं उसका अनुचर बना हूं, ऐसे कंस पापी कंस के उसका आदेश मैं बंद करता हूं। इसलिए आज मैं भगवान की अहित की कृपा से ही उनके चरण कमलों का दर्शन का सौभाग्य पाने जा रहा हूं। भगवत भक्त लोग ऐसे ही सोचते हैं, सब विषय में भगवान की कृपा गुरु जी की महिमा करुणा इसको अनुसंधान करते हैं किसी भी काम में। मैं आज जो जा रहा हूं मान लें कि विदेशों में देश में सब जगह आदर लोग करते हैं, किस लिए, इसलिए पढ़ा लिखा एकदम नहीं, कुछ ज्ञान भी नहीं, केवल गुरु सेवा से मैं समझता हूं। जो गुरु जी की निष्कपट सेवा की, नई सेवा हो सकी तभी निष्कपट होकर के सेवा करने की चेष्टा की। इसलिए वैष्णवों का सब समय आदर दिया वैष्णवों को, इस कारण से ऐसा तभी यह मुझे ऐसा लगता है ये भक्ति में हमारा बाधक है। मैं पहले सहज रूप में जो भक्ति का साधन करता था वो नहीं हो पा रहा, तो इस तरह से कहते हैं आनंद घन भगवान श्री कृष्ण साक्षात्कार सौभाग्य जिनका होगा उसको समझना होगा कि उसके सारे अनर्थ दूर हो गए इसलिए भगवान के दर्शन होने जा रहे। कंस ऐसा सोचेगा, कंस ऐसा नहीं सोचेगा। जब कृष्ण को देखा यहां मथुरा में यहां मंच पर बैठे हुए और देख रहा है कृष्ण और बलदेव को, ऐसा सोचा होगा, किंतु अक्रूर जी वहां पर थे और वहां की जादुओं की पत्नियां थी, वो कैसे कह रहे हैं ऐसे? ठीक ऐसे बोलूंगा ऐसा कहें। आज हम लोग जैसे भी हो हरि कथा जो सुन रहे हैं यहां पर बैठकर, ये साधारण भाग्य की बात नहीं है। हम लोग अभी सब देवताओं की उपासना नहीं करके राधा कृष्ण की एकांतिक जो उपासना करने की बात हमारे हृदय में आई है, ये सहज बात नहीं है, ये छोड़ देना सहज बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को अपने को अनुगत कहना, रूपानुग वैष्णव कहना, ये साधारण बात नहीं है। विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ पद है ये। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे हम लोग इसको? कुछ कुछ समझ रहे हैं, इनको खूब सूझी से विचार करें। भक्त लोग ऐसे विचार करते, सोते हैं तो वो ये सब विचारों को लेकर के सोते हैं, और जगते तो हैं तो क्या है हमारी भक्ति में? उस समय में भगवत को स्मरण करने की चेष्टा करते हैं, गुरु परंपरा को स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कृष्ण के जितनी लीलाएं हैं उनको, धामों को, महाप्रभु के धाम को एक एक करके सबको प्रणाम करते हैं, हरिनाम करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं। आज जिनके हृदय में आए, जैसे आज हमको क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कैसे पैसा लेना है, इस ट्रिक में, इस फंदे में के लिए लग गए, आज क्या क्या करना है, चित्त अशांत है, ऐसा नहीं। इसलिए कह रहे हैं आज हमको जो ये सौभाग्य हो रहा है, अब इसे ये प्रतीत होता है कि हमारे सब अनर्थ दूर हो रहे हैं या दूर हो गए हैं। अजभव शेषण का भी बंदित चरण भगवान, अज मने ब्रह्मा, शंकर शेष मने शंकर शन, और शनक आदि ऋषियों के द्वारा बंदित चरण भगवान जो श्री कृष्ण है, योगियों के ध्येय परंपर उनका जो चरण है, आज मैं प्रत्यक्ष रूप से आज मैं वहां उनके दर्शन करने जा रहा हूं। भाव में एकदम पा गए, निर्भर हो गए, आ मैं कैसे उनको प्रणाम करूंगा, उनके चरणों को कैसे स्पर्श करूंगा, क्या हमें वो अपना चरण कमल, ये हस्त कमल हमारे से पर करके चाचा जी कैसे आए ये कहेंगे? आज यदि वो हमें ऐसा करेंगे तो हमारा परम सौभाग्य सत्य ही, आज मैं हमारा जीवन कृतार्थ हो गया है, आज यथार्थ मैं धन्य आदि धन्य होऊंगा, ये सब कहते हुए चले जा रहे। इच्छा हो रही है रथ से उतर करके जहां ब्रज भूमि आएगी बस वहीं पर प्रणाम करें। नंद गांव में गए तो क्या किया, रथ से उतर करके उनके चरण कमलों को देख करके उस पर लोटपोट हो गए, कभी उसको सिर से पकड़ रहे हैं, कभी उसकी धूली अंगों में ले रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, विचित्र दशा। ये सब सोचना चाहिए और क्रूर जी का हो रहा है, वो भी दासो रस के हैं, तो जो इससे ऊपर वाले होंगे उनकी क्या दशा होगी, हमारे रूप सनातन की क्या दशा होगी, उसी को ग्रहण करने की लालसा से साधन भजन करना चाहिए। पंचा फल पावने आ जाओ भैया घर में, कहाँ जल्दी जाओ।